दिन भर तारीख 16 फरवरी दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म। शशिकला के करीबी पलनी सामी बने नए मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने कहा करेंगे संघर्ष। 2005 दिल्ली बम धमाके मामले में अदालत ने किए दो अभियुक्त बरी। धमाके में 67 लोग मारे गए थे।
जज साहब ने हमारे लिए कोई फैसला नहीं किया। आतंकवाद को जगह दिएगी, आतंकवाद और फैलेगा। आतंकवादियों को पता है कि करो कुछ दिन के बाद छुट जाओगे।
कार्यक्रम में खबरें भी होंगी, आपकी राय भी होगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में ईके पलनीसामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल विद्यासागर राव ने आज सुबह एआईएडीएमके विधायक दल के नेता पलनीसामी को मिलने के लिए बुलाया था। इसी मुलाकात में राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद शशिकला की जगह पलनीसामी विधायक दल के नेता चुने गए। शशिकला ने कल बेंगलुरु में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने 2005 में दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में दो अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इस बम धमाके में 67 लोग मारे गए थे। 2005 में ये धमाके दिल्ली के सरोजनी नगर और करोल बाग के व्यस्त बाजारों में हुए थे और ये ठीक दिवाली से दो दिन पहले हुए थे। मलेशिया के उप प्रधानमंत्री अहमद जाहिद हमीदी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि क्वालालंपुर के एयरपोर्ट पर जिस शख्स को जहर दिया गया वो उत्तर कोरियाई नेता किम उन जोंग के सौतेले भाई हैं। सोमवार को उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस बीच दो और लोगों को इस सिलसिले में पकड़ा है। अब तक कुल 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मलेशियाई अधिकारियों ने किम जोंग नाम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर लिया है, हालांकि उन्होंने इस रिपोर्ट में कही बातों का ब्यौरा नहीं दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल अल जुबैर ने उम्मीद जताई है कि उनका देश और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन में अमेरिका के साथ मिलकर मध्य पूर्व में आ रही चुनौतियों का सामना कर लेंगे। नए अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के साथ पहली मुलाकात के शुरू होने से पहले वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम इलाके के सभी मसलों पर ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम मिलकर इलाके में आ रही चुनौतियों का बखूबी सामना करने में सक्षम हैं। सऊदी विदेश मंत्री के शब्द। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि वो इसराइल फलस्तीन विवाद में 2-स्टेट सिद्धांत से दूर हो रहे हैं। इन संकेतों से उठी चिंता के बारे में पूछने पर सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि वो ट्रंप प्रशासन के साथ सभी मुद्दों पर काम करने के इंतजार में हैं। इस बीच फलस्तीन ने इस बात पर जोर दिया है कि वो 2-स्टेट समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सीरिया में 6,000 से ज़्यादा आम नागरिक फंसे हुए हैं और नवंबर के बाद से कोई सहायता उन तक नहीं पहुँची है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सलाहकार जान इंग्लैंड ने कहा कि मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के कारण लोग मर रहे हैं और भूखमरी भी बढ़ गई है।
The sieges are not compatible with cessation of...
घेराबंदी युद्ध विराम के हिसाब से उचित नहीं है। ये सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के लिहाज से भी उचित नहीं है। इसमें दो गैर कानूनी चीजें हैं। पहला तो ये कि आम नागरिकों को मानवीय सहायता नहीं मिल रही है और एक तरह से उनका गला घोटा जा रहा है। दूसरे ये कि नागरिकों को कहीं भी आने जाने की छूट नहीं है, यहाँ तक कि घायलों को भी वहाँ निकलने की इजाज़त नहीं है। ये दोनों बातें अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और युद्ध अपराध हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सलाहकार जॉन एग्लैंड के शब्द। हालांकि संयुक्त राष्ट्र को सहायता सामग्री पहुंचाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उनकी गाड़ियों को 12 जगहों पर स्थानीय लोगों या फिर सीरियाई सेना ने आगे बढ़ने से रोक दिया। ये हालत तब है जबकि पूरे देश में युद्ध विराम लागू है। जॉन एग्लैंड ने पिछले साल के रूस और अमरीकी सहयोग की सराहना की, लेकिन उनका कहना है कि अब वो सहयोग नजर नहीं आ रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार की सरकार का कहना है कि 4 महीने से रकाइन प्रांत में चल रहा सेना का अभियान अब खत्म हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब वहां स्थिति सामान्य है और अब केवल पुलिस की ज़रूरत है। बांग्लादेश से लगती सीमा के पास इस प्रांत में अक्टूबर में अभियान शुरू किया गया था और उस वक्त 9 पुलिसकर्मियों की चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आखिरकार तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला के जेल जाने के बाद उनके वफादार पलनी सामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल विद्यासागर राव ने आज सुबह AIADMK विधायक दल के नेता पलनी सामी को मिलने के लिए बुलाया था। इसी मुलाकात में राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। शाम को सामी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ साथ 30 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली।
नान दिंडकल सी श्रीनिवासन एनुम नान सट्टपड़ी अमैक्कप्पेट्ट के
सेंगोट्टैयन एनुम नान
सेल्लूर के राजु एनुम नान
பி தங்கமணி என்னும் நான்
எஸ்பி வேலுமணி என்னும் நான்
டி ஜெயக்குமார் என்னும் நான்
சி வி சண்முகம் என்னும் நான்
சபத் கிரகண சமாரோஹ் கே தௌரான் வஹா மௌஜூத் விதாயகோ நே சசிகலா ஔர் ஜெயலலிதா கே நாரே லகாயே। अब राज्यपाल विद्यासागर ने नए मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। विपक्षी डीएमके का कहना है कि बहुमत के लिए 15 दिन की जरूरत नहीं है। डीएमके नेता TKS LN गोविन ने कहा,
Why 15 days is a question? Because so far there was a debate on this.
एलन गोविन कह रहे थे कि विश्वास मत के लिए 15 दिन क्यों? ये एक सवाल है। इसके लिए 7 दिन काफी थे। आप जानते ही हैं कि किस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है। डीएमके प्रवक्ता TKS LN गोविन के शब्द। इस बीच पार्टी से निष्कासित नेता पनीर सेल्वम ने कहा है कि वो लड़ाई जारी रखेंगे। तो चेन्नई में इस समय क्या चल रहा है, मैंने बात की स्थानीय पत्रकार KV लक्ष्मणा से और सबसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या पलनी सामी मात्र कठपुतली मुख्यमंत्री हैं?
पूरे सरकार के ऊपर शशिकला जी का दबदबाव रहेगा और पार्टी के ऊपर भी उन्होंने अपने नेफ्यू को अपॉइंट करके पार्टी का कंट्रोल एकदम अपने में ले लिया है, तो ऐसा कोई है नहीं, उनका दबदबा हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक है, ये बहुत ही सुलझे हुए और सीनियर लीडर हैं, लेकिन काफी लॉयलिस्ट हैं ये अम्मा के और शशिकला के, तो ऐसा कोई काम ये शायद खुद से ही नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ जाए। लेकिन ये थोड़ा समय बताएगा कि क्या वो अपने आप उभर के आते हैं, क्योंकि 4 साल लंबा समय है, तब तक बन के रहेंगे, शशिकला जी के मार्गदर्शन में चलेंगे, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा और परिस्थितियां किस तरीके से डेवलप हो सकती हैं।
अब जबकि नया मुख्यमंत्री राज्य को मिल गया है और उधर जो पुराने मुख्यमंत्री हैं ओ पनीर सेल्वम, उन्होंने कहा कि वो लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रहेगा उनका, तो उनके पास क्या विकल्प है?
विकल्प तो लड़ाई है, जो उन्होंने तो मुहिम छेड़ी दी है, आज ही इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है पहले तो, कि कहते हैं कि शशिकला का जो इलेक्शन जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे है वही गलत है, तो उन्होंने उसके बाद जैसे उन्होंने जो जो एक्शन लिए हैं वो सारे ही नकार कर दिए जाएं, तो वो एक उस तरीके की लड़ाई है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल लड़ाई की तरह और देगा। लेकिन उनका कहना ये है कि अभी भी कुछ MLA जो हैं बंदी हैं, क्योंकि मेजॉरिटी 5-7 MLA के ऊपर थोड़ा पाला पलट लें किसी भी टाइम तो सरकार गिर सकती है किसी भी टाइम पे, तो शायद उनका संकेत इस तरफ है कि इस सरकार को जो अब बनी है हम सिर्फ चंद घंटों का सरकार बनाना चाहते हैं, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा। इनका दावा है कि अभी भी सरकार ये गेर सकते हैं।
कितनी बड़ी चुनौती होगी नए मुख्यमंत्री पलनी सामी के लिए बहुमत साबित करना?
देखिए, बहुमत साबित इसलिए हो जाएगा शायद, क्योंकि उसमें शायद दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि आज भी शपथ ग्रहण समारोह के बाद में सारे MLA लोग फिर से वो अपने जो रिसोर्ट है जो चेन्नई के बाहर में वहाँ फिर से वापस चले गए हैं। जब भी बल परीक्षा होगी असेंबली के अंदर उसके बाद ही कहीं उनको खुला अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह जाने दिया जाएगा, इस तरीके के समाचार मिल रहे हैं, तो ये फ्लोर टेस्ट जीत पाना तो मुश्किल नहीं लगता है। हाँ, अनलेस अगर ये जो असेंबली के अंदर में तो खुले हैं, वहां पे सिर्फ वॉच एंड वार्ड स्टाफ के अलावा कोई और आ नहीं सकता है।
जानकारी दे रहे थे चेन्नई से स्थानीय पत्रकार KV लक्ष्मणा। तो पलनी सामी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में उनकी हैसियत क्या है, राजनीतिक हैसियत? मैंने ये सवाल रखा बंगलुरु में अपने सहयोगी इमरान कुरैशी के सामने।
जी, पलनी सामी एक ऐसे नेता हैं जो पश्चिम तमिलनाडु के गौंडर समुदाय से आते हैं और पश्चिम तमिलनाडु में गौंडर समाज बहुत ही प्रमुख समुदाय है, ये इसलिए उनको चुना गया है क्योंकि वो पहले जयललिता के बहुत करीब थे और उसके साथ शशिकला के बहुत करीब माने जाते हैं। मगर पलनी स्वामी को विधायक दल के नेता बनाने से शशिकला एक बहुत ही अहम राजनीतिक खेल खेला है। मतलब ये कि जो अन्ना डीएमके की विधायक दल है उसमें ज्यादातर पश्चिम तमिलनाडु से जो विधायक चुने गए हैं वो ज्यादातर गौंडर समाज के हैं। इन्होंने पहला चुनाव करीब 1989 में जीता था और उसके बाद से लगातार हर चुनाव में वो जीते आए हैं। खास बात यह है कि वो ऐसे क्षेत्र से चुने गए हैं जहां वनियार जाति के लोग ज्यादा होते हैं गौंडर से भी।
इमरान, ये बताइए कि इस समय जो शशिकला हैं वो बेंगलुरु की जेल में हैं, तो कैसा बीता उनका कल का दिन और क्या नए मुख्यमंत्री के चुने जाने के बाद जेल के आसपास गतिविधियां बढ़ गई हैं?
शशिकला, उन्होंने एक पेशकश की थी कोर्ट के सामने उनके वकीलों ने कि उनको क्लास ए कैदी के तरह उनको सहूलत दिया जाए, मगर कोर्ट ने उसको मना कर दिया। कहा कि वो जो सामान्य तौर के जो कैदी होते हैं वही सहूलत दे सकते हैं इनको भी। ये एक ही एक सवाल पूछा गया कि क्या आप इलावर्सी जो दोषी नंबर 3 हैं वो साथ में रह सकते हैं, तो बोले हाँ। तो इसके बाद उनको एक 10 फीट और 8 फीट का एक छोटा सा वो होता है सेल होता है उसमें रखा गया है और उनको सफेद और ब्लू बॉर्डर की वो साड़ी होती है जो कैदियों को देते हैं वो दिया गया है। तो अभी जब जो मंत्रिमंडल बन गई है और पलनी स्वामी मुख्यमंत्री का शपथ भी ले लिए हैं तो शायद ये हो सकता है कि अब वहां से मंत्रिमंडल नहीं आया भी तो पलनी स्वामी तो जरूर आएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए।
तमिलनाडु की राजनीति में पलनी स्वामी की राजनीतिक हैसियत क्या है और जेल में शशिकला क्या किस तरह से उनका वक्त कट रहा है, जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। दिल्ली की एक अदालत ने 2005 में दिल्ली में जो सिलसिलेवार धमाके हुए थे उस मामले में 2 अभियुक्तों को बरी कर दिया है और मास्टरमाइंड को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। जैसा कि आप जानते होंगे और आपको याद दिला दें कि इन धमाकों में 67 लोग मारे गए थे और ये धमाके दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट, पहाड़गंज और कालकाजी में हुए थे और ये धमाके दिल्ली में ये धमाके दिवाली से पहले हुए थे। क्या कुछ कहा अदालत ने, सुनिए दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट में।
इस फैसले को दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अतिरिक्त सेशंस जज रितेश सिंह ने मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजली को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन इस मामले में तीसरे अभियुक्त तारिक अहमद दार को एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने और इसे समर्थन देने के आरोप का दोषी पाया गया। अदालत ने कहा कि चूंकि वो पहले ही 10 साल जेल में रह चुके हैं इसलिए अब उन्हें रिहा कर दिया जाए। फैसले पर एक वकील ने मीडिया को जानकारी दी,
नाइन एसोसिएशन विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसके लिए एक्विटल किया। जहां तक बॉम्ब ब्लास्ट का सवाल है वो सबको एक्विट कर दिया है और इन्होंने 11 से ज्यादा साल कोर्ट में कस्टडी में ऑलरेडी काट लिए हैं, तो जिनका कन्विक्शन भी हुआ है तारिक अहमद दर का उनको भी ऑलरेडी अंडरग्राउंड में छोड़ दिया।
29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट, पहाड़गंज और कालकाजी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। अदालत ने तारिक अहमद दार को यूपीए की धारा 38 और 39 के तहत दोषी पाया। इस मामले में फारूक अहमद बाटलू और गुलाम अहमद खान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और जेल में वक्त बिताने के बाद वो पहले ही रिहा हो चुके हैं। दोनों अभियुक्तों पर आतंक की फंडिंग का आरोप था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले की जांच की थी। मारे गए लोगों के परिवार वालों ने इस फैसले पर निराशा जताई।
जज साहब ने हमारे लिए कोई फैसला नहीं किया, आतंकवाद को जगह दी है, आतंकवाद और फैलेगा, आतंकवादियों को पता है कि करो कुछ दिन के बाद छुट जाओगे, कोई बात नहीं, हम तो सबर करेंगे लेकिन हम आगे तक जाएंगे।
हमारे सिस्टम में खामी है, हमारी जो एजेंसियां हैं उसमें किसमें खामी है, पर ये फैक्ट है कि ये लोग दोषी थे पर इनको एकदम सजा छूट गए, ये कोई इंसाफ नहीं।
ये हमारे सामने उनको बोला कि भाई ये बरी हो गए,
अपील
तो हम क्यों आए, हमें भी मार डालो तो अच्छा है, जब हमारे बच्चों को खत्म कर दिया हमें भी खत्म कर दो।
सरकार की तरफ से अपील होना हो हम जरूर जाएंगे जी हाईकोर्ट अपना वकील करके।
पीटीआई के अनुसार अभियोजन पक्ष के मुताबिक डार ने 5 अन्य लोगों अबू उजैफा, अबू अलकामा, राशिद, साजिद अली और जाहिद के साथ कथित तौर पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीरियल बम धमाकों को अंजाम देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। बाकी सभी 5 अभियुक्त फरार हैं और माना जाता है कि वो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
2005 में जो दिल्ली में बम धमाके हुए थे उसमें आया फैसला। भारत में शादियां एक बड़ा मौका होती हैं जो कई दिनों तक चलती हैं और जिसके दौरान ढेर सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। भारतीय शादियों में फिजूल खर्ची को कम करने के लिए एक बिल तैयार किया गया है जो अगर पारित हो गया तो शादियों में अधिक खर्च करना कानून के खिलाफ होगा। इस बिल को तैयार किया है सुपौल यानी कि बिहार से सांसद रणजीत रंजन ने, जिनसे आज मुलाकात की हमारे संवाददाता जुबैर अहमद ने। सांसद से पूछा कि आपने ये बिल लड़की और लड़के दोनों की तरफ से शादियों में खर्च रोकने का सुझाव दिया है?
दोनों चीज़ें हैं, एक तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ फूड है, और दूसरा लड़की वालों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। हम लोक लाज में, परंपरा में, हैसियत में, अब लड़के वाले की हैसियत हमसे अच्छी है तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक आप मिडिल क्लास की बात करो तो उसमें ये है कि भाई इतना तो उसने अपनी बच्ची के लिए रखा ही होगा।
तो सामाजिक दबाव है या जो लड़के वालों का दबाव होता है लड़की वालों?
देखिए, मैं कहूँगी लड़के वाले का तो बहुत ज़्यादा दबाव होता है। आप बिहार वगैरह में देखो तो अगर नौकरी पेशा लड़का है तो बोली लगती है कि पीओ है तो इतने लाख, आईएएस है तो इतने करोड़, 1 करोड़ तक जाती है, और अगर उससे ज़्यादा मिल गया तो कहेंगे कि नहीं हम तो उससे शादी कर देंगे। आप पंजाब देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, तो वो कैश नहीं लेंगे लेकिन कह देंगे भाई हमारी हैसियत के अकॉर्डिंग आपको इतने बारातियों को खिलाना है।
ये आइडिया आपको आया कहाँ से?
देखिए, ये सारा माहौल देख के, हम खुद 6 बहनें हैं और मेरे पापा बहुत नॉर्मल क्लास थे, मिडिल क्लास थे, और माँ के चेहरे में वो चिंता देखी है। आप सामने कैमरे के सामने शादी हो रही है, सबने सोना पहना हुआ है, बहुत अच्छे लग रहा है, लेकिन एक जो पीड़ा है वो बाद में निकलती है, उसको मैंने महसूस किया और देखा भी।
तो ये जो आप लिमिट करना चाह रहे हैं खर्च को, ये लड़की वालों के तरफ ही या दोनों की तरफ?
नहीं, दोनों के तरफ। हम लोगों ने कहा है कि मेरा एक अपना ओपिनियन है, फिर एक्सपर्ट बैठा के मैंने कहा ये लाना चाहती हूँ कि 5 लाख लड़की वालों का खर्च, 5 लाख लड़कों वालों का खर्च, 10 लाख में आप करो, अगर इससे ज़्यादा आप करते हो या अगर कानून बन जाता है तो मुआवजे के तौर पे 10% एक ऐसा कोष बने जो गरीब बच्चियों के लिए हो।
क्या क्या फीचर्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है आपके इस बिल?
देखिए, हम लोगों ने, अब कुछ लोग कह रहे थे कि इतने से क्या होगा, तो हम लोग कहा कि उसमें मैंने जो क्लॉज रखे है उसमें ये है कि आप गेस्ट कम करो, आप 1,000 लाते हो 200 लाओ, आप जो खाना दे रहे हो उसमें वैरायटी कम कर दो।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी जो है खुशी का मौका होता है तो उसमें लोग पैसे खर्च करना चाहेंगे, तो उसमें अगर कानून आड़े आ जाए तो ये दिक्कत की बात है।
उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में आप उन लड़की वालों से पूछे, मैं 20% की बात नहीं कर रही जो बहुत अमीर है, उनके लिए ये बहुत खुशी का मौका हो सकता है, तभी वो एक कार्ड, इन्विटेशन कार्ड की कीमत 10,000 होती है।
शादी के खर्चे रोकने की कोशिश में बिहार से सांसद रंजीत रंजन बता रही थी कि क्यों उन्होंने ये विधेयक प्रस्तावित किया, और एक ये प्राइवेट मेंबर बिल है। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां प्रस्तावित राम मंदिर की कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम जारी है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने इस कार्यशाला में पूरा एक दिन बताया और समझने की कोशिश की कि वहां आखिरकार हो क्या रहा है।
पौ फटने को है। एक बड़े हाथे में दो लोग नारंगी कपड़े से ढके एक बक्से को किसी कोठरी से निकाल रहे हैं। कपड़ा हटने पर पता चला कि दरअसल ये एक दान पात्र है, इसे रात को चोरों के डर से लॉक कर दिया जाता है। दान पात्र सहेजने वालों में यहाँ के एक सुरक्षा कर्मी हनुमान यादव भी हैं। 3,000 रुपए की सैलरी मिलती है हर महीने और 20 वर्षों से यही कर रहे हैं।
चोरी करने की कोशिश किए थे लेकिन भगवान का ऐसा दया था, बच गया। मॉडल के जाली वाले कार्ड दिए थे, भगवान की दया से कोई नुकसान क्षति कोई नहीं पहुंची, दान पेटी ले नहीं जाएगा।
घड़ी में 7 बज चुके हैं। बाहर गेट पर 5 टेम्पो गहरा काला धुआं उगलते हुए रुके हैं। आपस में एक दूसरे को कोहनी मारते 2 दर्जन महिला पुरुष भीतर दाखिल होते हैं। होड़ शीशे में रखे एक ढांचे को करीब से छूने की है। किसी ने माथा टेका, किसी ने 100 का पत्ता चढ़ाया और किसी ने सेल्फी ले डाली। अयोध्या के बीचों बीच ये मंजर है राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला का, जहां 1992 से पत्थरों को तराशने का काम जारी है। जिस ढांचे को देखने की होड़ है वो है प्रस्तावित राम मंदिर का ढांचा। बगल एक पत्थर पर लिखा है कि इसकी लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट होगी। पिछले करीब 24 वर्षों से इस तरह के पत्थर राजस्थान के भरतपुर से यहाँ लाए गए हैं। इन दिनों काम में जो दो प्रमुख शिल्पकार हैं, वे दोनों गुजरात के हैं। 1992 में जब विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था, उसके बाद से गिरीश भाई सोमपुरा परिवार के साथ यहाँ पहुँच गए थे। गिरीश भाई की तनख्वाह 12,000 रुपए है। दो बेटियों और बेटी की शादी हो चुकी है और वे सभी गुजरात लौट चुके हैं सिवाय इनके। गिरीश भाई ने बताया कि अब तक करीब 1,25,000 स्क्वायर फुट पत्थर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी पत्थरों की कमी है और करीब 75,000 स्क्वायर फुट पत्थरों की और जरूरत है।
65% काम हो गया है और अभी ये धीरे धीरे काम चलता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आदेश आ जाएगा और आदमी और बढ़ जाएंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा।
करीब 25,000 स्क्वायर फुट में फैली इस कार्यशाला में इन दिनों 20 लोग रहते हैं। हाथे में मंडराने वाले बंदरों की गिनती नामुमकिन है। दोपहर हो चुकी है। इस कार्यशाला को देखने के लिए अब तक 200 से ज्यादा लोग आकर लौट चुके हैं। हम 2.5 बोतल पानी पी चुके हैं और तमाम चाय। पहली खेप महाराष्ट्र के शोलापुर और पुणे की थी। श्रीकांत फडणवीस को सुनिए।
यहाँ जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, 21 स्थिति में है, ये देखने के लिए हम यहाँ मौजूद है। और हमारे राम जी के ऊपर जो श्रद्धा है, राम लल्ला के ऊपर, इसके वजह से हम सोनापुर महाराष्ट्र के दूर से यहाँ आ गए।
उधर पुणे की अरुंधति कुलकर्णी को लगा कि मामला अपनी अपनी आस्था का है, आखिर इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो।
जहाँ राम मंदिर है वो देखने के लिए भी आई है, वो पहला कैसा था वो तो मालूम नहीं। सब बोलते हैं वीट कहाँ है, वीट कहाँ है, सबने भेजे है, लेकिन ये देखने के लिए यहाँ तो बहुत सारी वीट है। पूछने वाले जहाँ से पूछ रहे हो यहाँ आके देख लेना, उनको भी पता चलेगा कि राम मंदिर का काम कैसा चल रहा है। बनेगा, राम मंदिर बनेगा, देर लगती है लेकिन बनेगा।
आधे घंटे बाद ही एक छोटी टेम्पो ट्रैवलर रुकी और नेपाल से राम लला का दर्शन करने आए लोग हाथ जोड़े दाखिल हुए। काठमांडू की रहने वाली राधा थोड़ी निराश भी दिखी।
बनना तो चाहिए जी, तो जरूर बनेगा। निराशा तो बन नहीं रहा, इसलिए देरी हो रही है बनने के लिए, इसलिए बनना चाहिए, बहुत खुशी हो रही।
वो बात और है कि राधा को किसी ने ये नहीं बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में विवादित स्थल को 3 पार्टियों में बांटा था। इनमें से एक निर्मोही अखाड़ा है, दूसरा राम जन्मभूमि न्यास यानी विश्व हिंदू परिषद और तीसरा सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सभी को फैसले का इंतजार है, लेकिन कार्यशाला में दर्शालुओं का जमावड़ा दोपहर बाद बढ़ने लगा है। कार्यशाला प्रभारी स्वदेश जी तेजी से चंदा देने वालों को रसीद काट कर दे रहे हैं।
यहाँ पत्थर तराशी का काम होता है, फिर यहाँ हम बैठे रहते हैं, जो राम भक्त आते हैं, जो दानदाता आते हैं, अगर मंदिर में कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो उनको मैं रसीद देता है, चला जाता है उससे। ये मंदिर के पत्थर के निर्माण में जो भी खर्च आता है उससे खर्च होता है।
जम्मू से करीब 14 लोगों का ग्रुप सुबह पहुंचा है। कनक भवन और सरयू में डुबकी लगाने के बाद अब कार्यशाला का समय है। कुछ लोग दान पात्र में चढ़ाते हैं, कुछ बंदरों के खौफ से नोट मुट्ठी में दबाए परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ पत्थरों पर स्केच पेनों से अपना अपना नाम पता भी लिख रहे हैं। चूंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए तमाम को मामले की राजनीति भी पसंद थी। मथुरा से आए गोवर्धन शर्मा।
देखो, राजनीति का तो उल्टा ही हिसाब है जी। राजनीति का धर्म के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। राजनीति तो अपने स्वार्थ के लिए जो मर्जी बोल सकती है, कोई भी पार्टी बोल सकती है, कोई विरोध भी कर सकता है उसका और कोई समर्थन भी कर सकता है।
दो बज चुके हैं। कार्यशाला के कर्मचारी अब थोड़ी हड़बड़ाहट में है। पास ही में कारसेवकपुरा है, जहाँ रोज लंगर चलता है। कार्यशाला में पत्थर तराशने और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तो चलता रहेगा, लंगर का समय किसी का इंतजार नहीं करता। बंद हुआ तो अगले दिन ही खुलेगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC अयोध्या।
इस रिपोर्ट के बाद अब आप सुनिए आपकी राय, यानी कि आपकी भेजी हुई चिट्ठियां।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और साथ में इंदु पांडे का भी।
नमस्ते।
नमस्ते, बहुत ही एकदम धीमी आवाज में आप नमस्ते कह रही हैं, क्या चिट्ठी पढ़ने का मन नहीं है आज?
नहीं नहीं, चिट्ठियां पढ़ेंगे तो वो आ जाएगी आवाज।
आ जाएगी आवाज, अच्छा
जी।
तो आपके हाथ में एक पोस्टकार्ड है, कहाँ से आया है
ये? हमारे पास आया है जालोर राज्य, राजस्थान से। तुलसाराम पटीरका
लिखते हैं, क्या लिखते हैं
कि मैं पिछले 6 साल से विख्याता पद पर कार्यरत हूं। मेरे लेक्चरर बनने में बीबीसी का बहुत बड़ा योगदान है।
अरे वाह।
क्योंकि राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अपडेट होना बहुत जरूरी है, जो मैंने पिछले 15 सालों से बीबीसी से ही प्राप्त किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटी साहब। आप जरूर सुनते रहें बीबीसी के कार्यक्रम, और अपने आसपास जो आपके छात्र हैं, अब तो आप व्याख्याता हैं, छात्रों को भी छात्राओं को भी बताइए कि वो बीबीसी सुने और हमसे जुड़े।
और ये ईमेल है आशुतोष कुमार पांडे का, सुंदर सदन पकड़ी चौक आरा भोजपुर बिहार से।
जी हाँ, हमारे पुराने श्रोता हैं।
लिखते हैं कि दुनिया जहां में आपने 2 विशेषज्ञ बुलाए, अच्छा लगा, लेकिन सईद नकवी पूरी तरह से अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं रहे। रेडियो की आवाज कितनी भी तेज कर लीजिए, सईद नकवी की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ यरूशलेम में भारतीय पत्रकार हरेंद्र मिश्रा वहां की तमाम गतिविधियों को बहुत सहजता से समझाने में कामयाब हो जाते हैं।
देखिए साहब, हमने जितना इस्तेमाल किया सईद नकवी की आवाज का, शायद उसमें कोई खोट रही हो, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सईद नकवी जैसा बोलने वाला इंसान इस वक्त मौजूदा दौर में हिंदी उर्दू में बहुत कम लोग हैं। इतने ज्ञानवान जितना उन्होंने देखा है, जितनी दुनिया भर में वो घूमे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि सईद नकवी साहब हमारे स्टूडियो में आते हैं, बात करते हैं, थोड़ा और उनको गौर से, थोड़ा विस्तार से सुना जाए तो और अच्छा रहेगा।
और अगला ईमेल लेते हैं अरुण कुमार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। कहते हैं कि मैं 31 साल से नियमित रूप से बीबीसी सुन रहा हूं।
ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है।
15 जनवरी बुधवार को बीबीसी का प्रसारण और निखिल रंजन जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम दुनिया जहान, जो फिलिस्तीन और इजराइल समस्या के बारे में रहा, काफी अच्छा और ज्ञानवर्धक रहा। 4 जनवरी से बीबीसी प्रसारण की फ्रीक्वेंसी बदलने से रेडियो प्रसारण साफ और स्पष्ट सुनाई दे रहा है।
किस इलाके से लिख रहे हैं?
इन्होंने छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से लिखा है।
मध्य प्रदेश में स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अब भी हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं, ईमेल आए हैं कि कार्यक्रम सुनने में उन्हें अड़चन हो रही है। तो अब हम एक जो नई फ्रीक्वेंसीज हमारी हैं उनके बारे में सूचना आपको हमारे कार्यक्रम में मिलेगी। आप गौर से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा उन फ्रीक्वेंसीज को, उन्हीं के हिसाब से सुनेंगे तो हो सकता है कुछ बेहतर आपको प्रसारण सुनने को मिले।
जी, और अगला ईमेल है दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज हॉस्टल के कमरा नंबर 5 से मुकेश सिंह पवार लिखते हैं।
मुकेश सिंह पवार जी, अच्छा, बिल्कुल दिल्ली में ही हैं। तो
आप कहते हैं कि आप अपनी कोई भी शिकायत बेहिचक लिख सकते हैं, यदि ऐसा है तो क्या मैं कोई शिकायत नहीं कर सकता? मेरे 2 शिकायती पत्र शामिल नहीं हुए।
ओ अच्छा, 2 शिकायती पत्र शामिल नहीं है हुए, इसकी शिकायत कर रहे हैं।
जी, जी, जी।
अपनी शिकायत तो बताते पहले आप पवार साहब। खैर, अगली बार अगर आपकी कोई शिकायती पत्र आएगा या तारीफ वाला पत्र आएगा तो जरूर शामिल होगा, जैसे कि ये पत्र शामिल हुआ।
लेकिन एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है इन्होंने कि आप जेएनयू पर तो पूरा कार्यक्रम कर देते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पर नहीं।
ओ अच्छा, बिल्कुल, जेएनयू इसलिए क्योंकि जेएनयू पर बहुत सारी खबर पिछले पूरे साल रही, अब भी बीच बीच खबरों में आता है। लेकिन हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में हम चाहेंगे कि कभी वहां आ करके आप लोगों से बातचीत की जाए, या हो सकता है इंडिया बोल कार्यक्रम वहां से किया जाए, इसके बारे में हम सोचेंगे।
और अगला ईमेल है लाल बहादुर कुमार सिंह का मगध विश्वविद्यालय से। कहते हैं कि जो रोज
मगध विश्वविद्यालय बोधगया के हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि ये चिट्ठी मैंने पढ़ी है इनकी। क्या कहते हैं?
लिखते हैं कि आज भी जिस रोज बीबीसी नहीं सुनता वो अच्छा नहीं लगता, कुछ अधूरा लगता है, और इनका अनुरोध है कि एक बार वो वाला म्यूजिक बजाएं जो ढोल के थाप के साथ शुरू होता था।
अच्छा, वो जो पुराना ओंकारनाथ श्रीवास्तव और अचला शर्मा जी के जमाने की बात ही कर रहे हैं। देखिए बंधु, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, कार्यक्रम बदलते हैं, यहाँ तक कि इंसान और दुनिया तक बदल जाती है। कभी अगर हम पुरानी अगर खजाने से कुछ चीजें निकालेंगे तो ये संगीत आप सुन सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
तो इसी के साथ
मुझे लगता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी 4 या 5 पोस्टकार्ड्स और पड़े हुए हैं, कई ईमेल्स भी हैं, लेकिन अब समय नहीं है इंदु जी, माफ कीजिएगा। तो अपने श्रोताओं से भी माफी मांगता हूँ और चलते चलते पता बताता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो तुरंत लिखिए hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में ईके पलनीसामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दिल्ली की एक अदालत ने 2005 में दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाकों के सिलसिले में 2 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इस बम धमाके में 67 लोग मारे गए थे। मलेशिया के उप प्रधानमंत्री जाहिद हमीदी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि क्वालालंपुर के एयरपोर्ट पर जिस शख्स को जहर दिया गया वो उत्तर कोरियाई नेता किम उन जोंग के सौतेले भाई हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल अल जुबैर ने उम्मीद जताई है कि उनका देश राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन में अमरीका के साथ मिलकर मध्य पूर्व में आ रही चुनौतियों का सामना कर लेगा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। तिलक राज भाटिया स्टूडियो संभाल रहे थे। bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। हमारी मुलाकात होगी सुबह नमस्कार भारत में। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।